विश्व दर्पण। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हम सीरिया पर अमेरिका व उसके घटकों की ओर से किए गए हमले की चर्चा करेंगे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका ने सीरिया पर अंततः हमला कर ही दिया और इस बार ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस हमले में उसका साथ दिया। सीरिया 7 साल से अधिक की अवधि से आतंकवाद में ग्रस्त है और आतंकवाद से निरंतर संघर्ष कर रहा है। आतंकवाद झेल रहे इस देश पर हमला करके अमेरिका और उसके पश्चिमी घटकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे आतंकवाद के समर्थक हैं और सीरिया में आतंकवादियों को बाकी व सीरियाई राष्ट्र को आतंकवाद में ग्रस्त रखना चाहते हैं। इसी के साथ वे चाहते हैं कि मध्य पूर्व के क्षेत्र में आतंकवाद की उम्र बढ़ाई जाए ताकि इस क्षेत्र में उनके निंदनीय लक्ष्य पूरे हो सकें। शनिवार को सीरिया पर हुए हमलों के संबंध में रोचक बात यह है कि अमेरिका व पश्चिम के इन हमलों के बावजूद सीरिया के आम नागरिक हर दिन की तरह घरों से बाहर निकले, बच्चे स्कूल व कॉलेज गए, महिलाओं ने खरीदारी की और पुरुष नौकरियों पर गए। इस तरह से उन्होंने ये दिखा दिया कि सीरिया की जनता अमेरिका के हमलों से घबराने वाली नहीं है। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया जताते हुए इसे अपराध बताया।
इन हमले दिशब सहर به سوریه یک جنایت است. بنده صریحا اعلام میکنم رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکارند و جنایت کردند. البته ترفی هم نخواهم بست، سودی هم نخواهم برد.
اون کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایک اپرادھ ہے۔ मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपराधी हैं और उन्होंने अपराध किया है। अलबत्ता इससे उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वास्तविकता भी यही है कि पश्चिम केवल अपने अवैध हित साधने के लिए सीरिया सरकार पर रासायनिक हमले का आरोप लगा रहा है। इससे पहले भी उसने खान शैखून इलाके पर आतंकियों द्वारा किए गए रासायनिक हमले को सीरिया की सरकार से जोड़ने की कोशिश की थी, जबकि सीरिया की सरकार अपने सभी रासायनिक हथियार और रासायनिक हथियारों के गोदाम संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर चुकी है और राष्ट्र संघ ने पुष्टि की है कि सीरिया सरकार के पास अब कोई भी रासायनिक हथियार नहीं है। पाकिस्तान के प्रख्यात टीकाकार डॉक्टर राशिद अब्बास कहते हैं कि सीरिया पर अमेरिका व उसके घटकों का हमला किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और जो लोग इस हमले का समर्थन कर रहे हैं वे प्रतिरोध के मोर्चे की सफलता से भयभीत हैं।
यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया जिसे कहें कि दो ब्लॉक्स में तकसीम है। मैं इसको यानी एक जो खित्ते के अनुमान से ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब इस्तेकामती ब्लॉक है और एक प्रो इसराइल ब्लॉक कह सकते हैं। एक हम जालिम और मजलूम का ब्लॉक भी कहते हैं कि जो कहीं पे भी होते हैं, वो जब देखते हैं कहीं पे जुल्म हो रहा है तो वो बग़ैर किसी सोचे समझे फितरी जो रद्द अमल होता है वो सामने आता है, वो यकीनन हमेशा मज़लूम की हिमायत में होता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त भी जो एक तो होता है ना बाकायदा तयशुदा इजलासों के बाद, कन्फ्रेंसिस के बाद जो इजलास होते हैं उसके बाद प्रेस रिलीज बनती हैं, मौक़िफ बनते हैं, नहीं एक होता है फौरी रिएक्शन होता है। तो इस वक्त भी जो फौरी रिएक्शन है वो जो हामी है वो मजलूम के हामी है और जो मुखालफत कर रहे हैं वो फितरी तौर पे भी बाज जो है वो जालिम के हामी हैं। उनको अपना वजूद और अपना मुस्तकबिल और अपना सब कुछ उन जालिमों की हिमायत के पीछे पोशीदा रहने में जो है नज़र आ रहा है। इसकी वजह से अगर मिस्र कर रहा है, उर्दन कर रहा है, अरब इमारात कर रहा है या सऊदी अरब, तो खैर मैं समझता हूँ कि ये तो उनके दौरे के असरात हैं। तो ये जो इस वक्त हिमायत आपको नज़र आ रही है, ये हिमायत बुनियादी तौर पे उस आइंदा आने वाले जो एक अवामी जमहूरी और एक जिसे कहते हैं इंसान पसंदाना किस्म का एक जो एक इतिहाद सामने आ रहा है उससे खौफ है। तो ये शाम का हमला जो है, शाम पर हमला ना अखलाकी लिहाज से, ना सिफारती लिहाज से, ना कानूनी लिहाज से, ना इंसानी लिहाज से, किसी लिहाज से भी इसको जिसे कहते हैं कबूल नहीं किया जा सकता।
भारत के प्रख्यात टीकाकार सौरभ कुमार शाही कहते हैं कि सीरिया की सरकार पर गोता में रासायनिक हमले का आरोप बिल्कुल निराधार है क्योंकि वहां पर काफी पहले से आतंकियों और पश्चिम के समर्थकों का कब्जा था।
यहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस चीज़ का ये है कि अगर आप डेमस्कस के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को देखें और ख़ासकर जून 2012 के बाद अगर आप डेमस्कस के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को देखें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि गूता का जो रीज़न था, चाहे वो ईस्ट का हो या वेस्ट, वेस्ट गूता भी एक ज़माने में आतंकवादियों के कब्ज़े में था, तो ये गूता का जो रीज़न था उसको इस तरह से, यानी उस पर कंट्रोल था आतंकवादियों का और वेस्टर्न सपोर्टेड जो भी आतंकवादी है उनका, इस तरीके से कंट्रोल था कि ऐसा लगता था कि दमिश्क कभी भी उस पर कब्ज़ा जो है इनका हो सकता है। लेकिन आप ये भी देखें कि ये वेस्टर्न पूरी की पूरी जो एक कोलिशन थी जो कि चाहती थी कि असद की हुकूमत वहाँ से चली जाए, इनका पूरा का पूरा विश्वास भी, इनकी पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंसी जो थी वो भी इस गूता रीजन में जो आतंकवादी बसे हुए थे इनके ऊपर थे। इनको हमेशा ये लगता था कि अगर कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन अगर ये आतंकवादी चाहेंगे तो फाइनली दमिश्क पर कब्ज़ा हो जाएगा, और एक बार जब दमिश्क पर कब्ज़ा हो गया तो बात की हुकूमत चली जाएगी और शायद वो सिर्फ तरतूस और जो साहिल जो है वहां पे उस इलाकों में महदूद रह जाए।
राशिद नकवी भी कहते हैं कि पूर्वी गोता में आतंकियों को जो पराजय हुई है उसे उनके समर्थक पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सीरिया पर हमला किया है। अलबत्ता उनसे अनुमान की गलती हुई है और उन्हें इससे लाभ के बजाय नुकसान ही होगा।
देखिए, गोता शर्की की शिकस्त जो है ना, ये वाकई बहुत बड़ी शिकस्त थी और ये खुद इतना बड़ा रद्दअमल खुद जाहिर कर रहा है कि ये गोता शर्की अभी तक इनसे हजम नहीं हो रहा। यानी ये जो अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस हो, बज़ाहिर ये कोई, यानी इतनी बड़ी बज़ाहिर जिसे कहते हैं एरिया के उनवान से अगर देखें कोई इतनी बड़ी फतह नहीं है जैसे पहले बड़े बड़े शहरों पर इन्होंने किया। एक मसलन एक दमिश्क के साथ एक जो है वो मुल्का एक इलाका है, लेकिन ये आखिरी उम्मीद थी। यानी इसको वो एक लटकती तलवार के तौर पे उन्होंने बशार असद के सर पे रखा हुआ था कि किसी वक्त भी इस इलाके से ये लोग उठेंगे और आके दमिश्क पे कब्ज़ा कर लेंगे, और एक कब्ज़ा मामूली सा कब्ज़ा करना ज़रूरी था। उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये फैला देना था कि पूरी हुकूमत ख़त्म हो गई, बशार असद ख़त्म हो गया, फलां फलां हो गया। ये एक आखिरी आसरा था उन्हें जो होता है शर्की, और जो ही ये आखिरी आसरा उनका ख़त्म हुआ, मैं समझता हूँ इसमें भी थोड़ा उनसे देर हो गई है। यानी अभी मुकम्मल सफाई हो चुकी है, यानी गोता शर्की के अंदर बाकायदा सीरियन जो है वो शाम के परचम लहरा दिए गए हैं। अभी दो दिन पहले ये हमला करते तो शायद उसका ये असर होता कि वहाँ से वहाँ के अब जितने दहशतगर्द हैं या वो मुंतकिल कर दिए गए हैं या वहाँ से वो निकल चुके हैं। यानी इस मौके पर आके खुद ये भी एक स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक बहुत बड़ी गलती है इस वक्त, बरक्स उसका साबित हुआ। यानी वो जिस मकसद के लिए ये ममालिक ये काम करना चाह रहे थे कि जो मुकामती ब्लाक है वो खौफ का शिकार हो जाएगा और उसके अंदर मज़ीद आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, बरक्स हुआ है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को उसका नुकसान हुआ है, और उसका नुकसान ये तो फौरी नुकसान है, और उसके जो असरात मुरतब होंगे उसके बाद वो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो है वो अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरनाक साबित हो।
सौरभ कुमार शाही कहते हैं कि इस तरह के हमलों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ की हैसियत कागज़ के शेर जैसी है, और ये हमला न केवल क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों बल्कि हमला करने वाले देशों के आंतरिक कानूनों का भी उल्लंघन है। उनका कहना है कि खेत तो कुछ अरब देशों की प्रतिक्रियाओं पर है जो ये जानते हुए भी इस हमले पर खुश हुए कि सीरिया में पश्चिम पराजित हो चुका है।
देखें, यूनाइटेड नेशंस का जहाँ तक सवाल है तो मैं उसे पेपर टाइगर मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी यूटिलिटी है यूनिसेफ में, यूनेस्को में, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में यूटिलिटी है जहाँ पर कि वो कोई पॉलिटिकल जिसका कोई रद्द अमल कहीं से ना आए। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से सारे कानूनों के इंटरनेशनल लॉ के धज्जियाँ उड़ाते हुए अटैक्स किए गए हैं, इस यानी कि रीजनल लॉज को छोड़ दी, इंटरनेशनल लॉ को छोड़ दी, अपने मुल्क के लॉ को भी, यानी जो पिछले यानी इराक पे और तमाम इन जगहों पे जब भी हमले किए गए वो भी यूएन से मैंडेटेड नहीं थे, लेकिन कम से कम अपनी जिस मुल्क ने हमला किया उसके पार्लियामेंट से मैंडेटेड थे। पर यहाँ तो ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसीजन दिया, ना तो अमेरिकन कांग्रेस ने डिसीजन लिया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, वहाँ डिसीजन ले लिया गया। तो लीगली तो आपको पता है कि इसका कोई वैल्यू इशू नहीं है, लेकिन मेरा मेरा गुस्सा, मेरा इशारा जो है वो उन दूसरे मुल्कों पे है। मेरा इशारा जो है वो सऊदी अरब, मेरा इशारा जॉर्डन और इस तरह के मुल्कों पे है। चले जी, अमेरिका और आप उससे क्या तवक्को थी, वो तो उनसे पता था कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ये जो खित्ते के मुल्क हैं जो अपने आप को अरब ममालिक कहते हैं, जो अपने आप को अरब सॉलिडरिटी का परचम लहराने वाले कहते हैं, इनका क्या रिएक्शन था? ये खुशी मना रहे थे, आप टाइमलाइन पे जाके देखें, इनके तमाम जो कमेंटेटर्स हैं, इनके तमाम जो यानी गवर्नमेंट सपोर्टेड जिस तरह के जो थिंक टैंक्स हैं उनका आप रद्द अमल इस पर पढ़ें, वो बड़ी खुशी इस पर मना रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये लड़ाई हार चुके हैं, जंग जो है वो जीती जा चुकी है सीरिया में, ये जो वहाँ पर अचीव किया गया उसको वापस से रोल बैक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर ये 113 मिसाइल जो दागे गए हैं उस पर अगर इनको खुशी जाहिर करनी है तो खुशी जाहिर कर लें, लेकिन इनको पता है कि स्ट्रेटेजिकली भी और टैक्टिकली भी ये सीरिया में जंग हार चुके हैं।
डॉक्टर राशिद नकवी का कहना है कि क्षेत्र के लोग और सरकारें अमेरिका के हथकंडों को अच्छी तरह पहचान चुकी हैं और अब इस क्षेत्र में साम्राज्य का कोई भविष्य नहीं रह गया है।
देखिए, खित्ते में अमेरिका को बुरी तरह नाकामियों का सामना है, ये जंग वो हार चुके हैं बुनियादी तौर पे, और न सिर्फ शाम में हार चुके हैं बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर। तो ये सूरत हाल अफगानिस्तान में नाकामियाँ, फिर इराक में नाकामियाँ, फिर अब शाम के अंदर नाकामियाँ, हिजबुल्ला को नाकाम करने, क्योंकि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ था ना कि अब हिजबुल्ला चूँकि जाके शाम में इन्वॉल्व हुई है तो अब उसमें लुबनान में उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उसके बरक्स हुआ है। और आइंदा यानी इस खित्ते में साम्राज्य का मुस्तकबिल कोई ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा, यानी इलाके के अवाम, इलाके की हुकूमतें भी हैं वो अमरीका के इन हथकंडों से अच्छी तरह आगाह हो गई हैं।
अंत में एक बार फिर इस हमले पर इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता की प्रतिक्रिया का एक वाक्य पेश करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में स्वीकार किया है कि हमने पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में और उनके शब्दों में मध्य पूर्व में $7 खरब खर्च कर डाले, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे सही कह रहे हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद भी अमेरिका जान ले कि वो जितना भी खर्च करेगा, जितनी भी कोशिश करेगा, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा।
همین چندی چند روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا گفتش که 7 تریلیون ما خرج کردیم در منطقه غرب آسیا به قول او خاورمیانه و هیچی گیرمون نیومد. راست میگه، چیزی گیرشون نیومده. بعد از این هم آمریکا بدانه هر چه خرج کنه، هر چه تلاش بکنه، قطعا در این منطقه هیچی گیرش نخواهد آمد.
जहां तक सीरिया के दुमा क्षेत्र में सरकार की ओर से रासायनिक हमले की बात है तो थोड़ी सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र पर सीरियाई सेना का नियंत्रण होने ही वाला है और आतंकवादी ये क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं। अतः सीरिया की सरकार या सेना को रासायनिक हमले की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये आतंकी और उनके आका हैं जो पराजय से बचने के लिए अपनी अंतिम कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और उसके घटकों ने भी सीरिया पर हमला इसीलिए किया है कि आतंकियों के खिलाफ सीरियाई सरकार की विजय को रोका जा सके।